તારીખ 28/12/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 394 પર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ઈડરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 152
પત્રાંક 394 एक पद का उद्धरण करके उस पर स्पष्टीकरण दिया गया है। पत्र का विषय है कि ज्ञानी के पास से जो उपदेश सुनने को मिलता है वो उपदेश के प्रति कितना प्रेम होता है, इसका एक दृष्टांत स्त्री का महिला का अपने पति के प्रति जो प्रेम होता है उस दृष्टांत को देकर के इस बात को समझाया है। परमार्थ वो है इस विषय का कि जो दृष्टि है सम्यक दर्शन अपने परमात्मा को एक को ही देखती है, इसके सिवा किसी को नहीं देखती है या खुद को भी नहीं देखती है तो दूसरे को देखने का तो सवाल नहीं। वो दृष्टि होने से पहले इनकी पूर्व तैयारी का 8 स्टेज लिया है, 8 दृष्टि, और एक एक दृष्टि के पद बनाया है, उसको सज्जाई कहते हैं, 8 दृष्टि की सज्जाई, और वो विषय उन्होंने लिया है। स्वतंबर के एक बहुत पुराने आचार्य हो गए, वहां से लिया है हरिभद्राचार्य, बहुत अच्छे महात्मा हो गए स्वतंबर में, इसलिए हरिभद्राचार्य की रचना है एक योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ है। कृपालु देव ने सत्श्रुत में 20 ग्रंथों का नाम लिखा है, इसमें 19 ग्रंथों तो दिगंबरों का है और एक ग्रंथ है श्वेतांबर का, योग दृष्टि समुच्चय, योग दृष्टि समुच्चय करके ग्रंथ है, वो हरिभद्राचार्य का है। उसमें ये विषय है सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका का, कि दृष्टि कैसे तैयार होती है जो सम्यक बाद में होती है, तो उसमें शायद 6 कांता दृष्टि है, कांता मैंने स्त्री, तो स्त्री की जैसी दृष्टि अपने पति पर रहती है और कहीं नहीं रहती है, चाहे वो रसोई पकाती हो, चाहे कपड़ा धोती हो, चाहे पानी भरने को नदी तालाब कुएं पर जाती हो बावड़ी पे, और चाहे इसके माथे पे पानी की गगरियां भरी हुई हो, उनका ध्यान तो एक ही जगह रहता है। उस तरह से जिसको सम्यक दर्शन होने वाला है उसका ध्यान कहाँ रहता है, कैसे रहता है, उस पर ये दृष्टांत देकर के विषय को स्पष्ट किया है। मन महिला नूरे वाला उपरे, गुजराती मापक से यशो विजय जी गुजराती हता। मन महिला नूरे वाला उपरे बीजा तेम श्रुत धर्मे रे मन दृढ़ धरे नानक शेपक वंत। घर संबंधी दूसरे समस्त कार्य करते हुए भी जैसे पतिव्रता महिला ऐसे स्त्री का मन अपने प्रिय भर्तार में लीन रहता है। वाला का अर्थ उसका प्रिय भर्तार, प्रिय पति उसमें लीन रहता है। वैसे सम्यक दृष्टि जीव का चित्त या सम्यक दृष्टि जो होने वाला है उस जीव का चित्त संसार में रह करके और उदय के समस्त काय प्रसंगों में प्रसंगों से प्रसंगों को करते हुए भी ज्ञानी से श्रवण किए हुए उपदेश धर्म में तल्लीन रहता है। श्रुत धर्म मैंने सुना हुआ, ज्ञानी से श्रवण किया हुआ सुना हुआ जो उपदेश मैंने अपने को जो उपदेश लागू पड़ता है ऐसा जो धर्म सुना उसमें इसका चित्त चौंक जाता है और कहीं इधर उधर नहीं जाता, इसलिए वो इसका अमलीकरण कर सकता है। अब ये दृष्टांत को क्यों लिया इस विषय का स्पष्टीकरण कृपालु देव दे रहे कि ऐसा दृष्टांत क्यों हमने दिया कि समस्त संसार में स्त्री पुरुष के स्नेह को प्रधान माना गया है। ऐसे माँ बेटे का होता है, भाई भाई का होता है, भाई बहन का होता है, पिता पुत्र का होता है, फिर भी सबसे ज्यादा प्रधान जो होता है वो पति पत्नी का होता है। उसमें भी पुरुष के प्रति स्त्री के प्रेम को, स्त्री के प्रति पुरुष के प्रेम का दृष्टांत नहीं दिया कि जितना प्रेम स्त्री कर सकती है, जिस क्वालिटी होती है इसके पास, ऐसी क्वालिटी प्रेम के पुरुष के पास नहीं होती है। बहुभाग रैर के इसकी बात अलग है, तो बहुभाग नहीं होती है, इसलिए दृष्टांत में ऐसा लिया। वो दृष्टांत में नहीं लिया, आपस का नहीं लिया, दोनों का एक ही का लिया, वंशायदेव। उसमें भी दोनों में भी उसमें भी मैंने दोनों में भी पुरुष के प्रति स्त्री का प्रेम को किसी प्रकार से भी उससे विशेष प्रधान माना गया है। सभी संबंधों में स्त्री का पुरुष के प्रति जो प्रेम है उस विशेष माना गया है, और उसमें भी पति के प्रति जो प्रतिव्रता स्त्री है उसमें भी स्त्री कैसे ली है, स्त्री भी में यानी क्वालिटी होती है, उसमें जो पतिव्रता स्त्री है इसके स्नेह को प्रधान में भी प्रधान माना गया है। वह स्नेह ऐसा प्रधान प्रधान किस लिए माना गया है कि चर्चा उठाई है खुद ने कृपालु देव ने, कि ऐसा स्नेह को प्रेम को प्रधान प्रधान किस लिए माना गया है कि तब जिसने सिद्धांत को प्रबलता से प्रदर्शित करने के लिए उस दृष्टांत को ग्रहण किया है, ये सिद्धांत को दृष्टि के सिद्धांत को सम्यक दर्शन के सिद्धांत को समझाने के लिए यही दृष्टांत पसंद किया, इसका क्या कारण है? ऐसा सिद्धांतकार कहता है, उस सिद्धांत समझाने वाला सिद्धांतकार यहां यह कहता है कि हमने उस स्नेह को इसलिए प्रधान से भी प्रधान समझा है कि दूसरे सभी घर संबंधी क्यों क्यों समझा है, इसका कोई वजह तो है कि उसको भी घर काम तो बहुत करना पड़ता है, घर संबंधी दूसरे दूसरे और दूसरे भी काम करते हुए भी उस प्रतिव्रता महिला का चित्त पति में ही लीन रूप से कितने विशेषण लिए हैं, एक परिणाम दिखाने के लिए, स्नेह के परिणाम दिखाने, लीन रूप से प्रेम रूप से स्मरण रूप से ध्यान रूप से और इच्छा रूप से रहता है। इतने प्रकार एक साथ होते हैं एक परिणाम में, उसमें उसकी लीनता भी है, दूसरे काम करते हुए लीनता इधर है, प्रेम भी है, स्मरण भी है यानी विस्मरण होता ही नहीं उसको, और वहां ध्यान रहा करता है उसका, और उसकी इच्छा भी इसकी ही रहती है, कि मेरे पति के साथ रहूं,
यानी परिणति हो गई ऐसी, यानी परिणति हो गई ऐसी।
हाँ, लगातार
निर्विकल्प
परिणति हो गई है। परंतु सिद्धांतकार कहता है कि इस स्नेह का कारण तो संसार प्रति ही है, फिर भी ये क्वालिटी में कोई अलौकिक बात नहीं है, ये तो लौकिक विषय है। ये संसार प्रति परिणमन है, परमार्थ प्रति परिणमन नहीं है। दोनों में क्या अंतर लिया? ये तो संसार में भी ऐसी बात है तो परमार्थ में कितनी हो सकती है? जब संसार में ऐसी होती है तो परमार्थ में कितनी होनी चाहिए, क्या होती होगी, जिसको होती होगी? इस पर से दृष्टि को समझाने कि क्यों दृष्टि अपने परमात्मा को चिपकती है और इधर उधर नहीं जाती, इसका क्या कारण? क्यों कि ऐसा सम्यक दृष्टि नरक में भी होता है तो वेदना की प्रधानता वहां है, ऐसा सम्यक दृष्टि देवलोक में होता है जहां देवी वैभव और देवियां होती है, फिर भी उसकी दृष्टि कहीं नहीं जाती। तिरियंत होता है या मनुष्य होता है, कहीं भी हो, मनुष्य में चक्रवर्ती भी होता है और एक भिखारी भी होता है, मजदूर। ऐसा मजदूर हो कि जो जंगल में से सूखे लाकड़े इकट्ठा करके बेच करके पेट का गुजारा करता हो, या 5 मन का बोझा उठा करके मजदूरी करता हो, ऐसा भी होता है। फिर भी इसकी दृष्टि कहीं जाती नहीं है। जैसे सारा जगत है ही नहीं, सम्यक दृष्टि के लिए सारा जगत है ही नहीं, तब दृष्टि परिणमन करती है। सारा जगत है ही नहीं, वो भी बराबर नहीं लगता है। सारा जगत है या नहीं है, दोनों में से एक ही बात नहीं है, है ही नहीं, नहीं है क्या नहीं है, दृष्टि को दरकार नहीं है। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, मेरे उसका है या नहीं ऐसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो देखती नहीं है। देखती नहीं है तो है और नहीं है, दो में से कोई बात उसको तो लागू नहीं पड़ती है, क्योंकि नहीं है मैं तो उसका है पने का स्वीकार करके गौण करने की बात है, जबकि दृष्टि में मुख्य गौण होता ही नहीं, वो देखती नहीं। ऐसा जिसका परिणमन है उसको दृष्टि कहने में आता है, वो बात समझाना चाहते हैं। इसलिए दृष्टांत अधूरा पड़ता है, ऐसा दृष्टांत भी अधूरा पड़ता है। लिखेंगे कि दृष्टांत सीमा को परिसीमा को प्राप्त होता है, सिद्धांत की परिसीमा यहां आती नहीं है। सिद्धांत तो इससे आगे जाकर के कुछ और बात है। परंतु सिद्धांतकार कहता है कि इस स्नेह का कारण तो संसार प्रत्यय है, और यहां तो उसे असंसार प्रत्यय करने के लिए कहना है, यहां संसार की बात नहीं करना है, इसलिए हम कंपैरिजन भी कैसे करें? मंदिर मंदिर की बराबरी कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद मंदिर की बराबरी कर सकता नहीं है, तो ये बात तो मस्जिद मंदिर की होगी कि संसार का दृष्टांत देना पड़ता है परमार्थ में परंतु यहां तो उसे असंसार प्रत्यय करने के लिए कहना है, इसलिए वॉस ने लीन रूप से, प्रेम रूप से, स्मरण रूप से, ध्यान रूप से, इच्छा रूप से, जहां करने योग्य है, जहां वॉस ने असंसार परिणाम को प्राप्त होता है उसे कहते हैं वो बात। और संसार परिणाम को प्राप्त करने के लिए ये सब शब्द को लगाना है परिणाम में। बॉस ने तो पतिव्रता रूप मुमुक्षु को किसको लागू किया? पतिव्रता स्त्री के स्थान में मुमुक्षु को बिठा दिया। वर्ष ने तो पतिव्रता रूप मुमुक्षु को ज्ञानी द्वारा श्रवण किए हुए उपदेश, क्या ज्ञानी द्वारा जो उपदेश श्रवण किया, इस उपदेश आदि धर्म के प्रति उसी प्रकार से करना योग्य है। जो अपना हितोपदेश मिला, क्या अपना हित का उपदेश मिला, अपने परम हित का उपदेश मिला, अपना परम मंगल कल्याणकारी उपदेश मिला, कितना परम मंगल कल्याण हो जाएगा अपना, ऐसा जो उपदेश मिला उसके प्रति ऐसा स्नेह मुमुक्षु को होना चाहिए, आना चाहिए। और वो भी सहज रूप से सुनकर के कुछ करें वो बात नहीं है, जिसको सम्यक दर्शन होगा उसको उपदेश के प्रति ऐसा स्नेह आएगा। नानी संबंधी श्रवण रूप जो उपदेश आदि धर्म, એના ઉપર થોડી 395 માં સ્પષ્ટ કર્યું છે। બીજો પેરેગ્રાફ છે ને એમાં, એવો કામ્ય પ્રેમ સ્ત્રીનો તેજ પ્રેમ સત્પુરુષ થી શ્રવણ થયો હોય એવો જે ધર્મ, તેને વિશે પરિણમિત કરવા કહે છે। બહુ ચર્ચા થઈ હતી એમાં, આ શબ્દો જ્ઞાની પ્રત્યે લઈ જાય છે, આ શબ્દો જ્ઞાની પ્રત્યે લઈ જાય છે, જ્ઞાની પ્રત્યે એને શું ઉપદેશ સાંભળ્યો, જ્ઞાની સંબંધી શું ઉપદેશ સાંભળ્યો, કે જ્ઞાની પ્રત્યે કેવા પરિણામ હોય મુમુક્ષુના, એને જ્ઞાનીનું જ લક્ષ રહ્યા કરે, જેમ સ્ત્રીને લક્ષ રહ્યા કરે એના પતિનું, એને જ્ઞાનીનું જ લક્ષ રહ્યા કરે, ત્યાંથી એ વાત નીકળતી હતી। થોડી ચર્ચા ચાલી પછી 395 માં પાછું પોતે પોતે એ વિષયને સ્પષ્ટ કર્યો છે, તેમાં લખ્યો છે કે એવો કામ્ય પ્રેમ સ્ત્રીનો તેજ પ્રેમ સત્પુરુષથી શ્રવણ થયો હોય જે ધર્મ, સત્પુરુષ સંબંધીને લીધો આયા, તેને વિશે પરિણમિત કરવા ચાહે છે, તે સત્પુરુષ દ્વારા શ્રવણ પ્રાપ્ત થયો છે જે ધર્મ, તેમાં સર્વ બીજા જે પદાર્થ પ્રત્યે પ્રેમ રહ્યો છે તેથી ઉદાસીન થઈ એક લક્ષપણે, એક ધ્યાનપણે, એક લયપણે, એક સ્મરણપણે, એક શ્રેણીપણે, એક ઉપયોગપણે, એક પરિણામપણે, અહીંયા બીજા ત્રણ વિશેષણ બધા રહે છે, સર્વરત્યમાં રહેલો જે કામ્ય પ્રેમ તે મટાડી શ્રુત ધર્મ રૂપ કરવાનો ઉપદેશ કર્યો છે, ત્યાં શ્રુત ધર્મ લીધો છે। એ કામ્ય પ્રેમથી અનંત ગુણ વિશિષ્ટ એવો શ્રુત પ્રત્યે પ્રેમ, જ્ઞાની પ્રત્યેનો પ્રેમ ન લીધો, શ્રુત પ્રત્યે પ્રેમ, શ્રવણ કરેલો એવા ધર્મ પ્રત્યે પ્રેમ કરવો ઘટે છે, તથા દ્રષ્ટાંત પરિસીમા કરી શક્યો નથી, જેથી दृष्टांत ने परिसीमा ज्या थी त्या सुधी नो प्रेम सिद्धांत त्या परिसीमापना ने पमाड्यो नहीं त्या चोखोट करे मुख चर्चा चाली थी भरूच में आचरता पत्र लीधो तो बहु चर्चा चाल हिंदी में तो आमज कर उपदेशादी धर्म के प्रति श्रवण के ज्ञान ज्ञानी द्वारा संबंधी नो अर्थ करो ज्ञानी द्वारा श्रवण किए हुए उपदेशादी धर्म के प्रति उसी प्रकार से करना योग्य है और उसके प्रति उस प्रकार से जो जीव रहता है तब उस मुमुक्षु को कांता नाम की समकित संबंधी दृष्टि में वह जीव स्थित है आया है ऐसा जानते हैं। कांता दृष्टि की प्राप्ति हुई तो कांता मैंने स्त्री दृष्टि की प्राप्ति हुई तो उस प्रकार के परिणाम में उस सम्यक दर्शन के पहले मुमुक्षु आ गया है। जैसे आठ स्टेज लिया है आठवीं है वो सम्यक दृष्टि है उसके पहले सात स्टेज लिया है यशो विजय जी ने और मूल में लिया है हरिभद्राचार्य ने लिया है योग दृष्टि समुच्चय में बहुत अच्छे परिणाम का वर्णन किया है इसलिए कृपालु देव ने इसको वहां स्थान दिया है और हरिभद्राचार्य है इसकी जो प्रमाणिकता है उसकी जो योग्यता है वो कुछ ऑथेंटिक मानी गई है। यश ने तो क्या थे पतिव्रता रूप मुमुक्षु को ज्ञाने द्वारा श्रवण किए हुए उपदेश आदि धर्म के प्रति उसी प्रकार से करना योग्य है। उसी प्रकार से मैंने लीन रूप से प्रेम रूप से स्मरण रूप से ध्यान रूप से इच्छा रूप से करना योग्य है और उसके प्रति उस प्रकार में जो जीव रहता है ऐसे प्रकार के परिणमन में जो जीव रहता है तब कांता नाम की समकित संबंधी दृष्टि ये समकिता स्टेज में वो जीव स्थित है वो स्टेज में वो स्थित हुआ है ऐसा हम जानते हैं वो बात लिया है। उपदेश आदि धर्म में जो भी उपदेश अपने को लागू पड़े उसके प्रति ऐसा भाव आना चाहिए जो भी स्टेज में जो भी उपदेश मिले उसमें और आखिर में सर्व संबंधी बात आई उसके तो ये जो उपदेश जो सारा उपदेश की श्रेणी है उसमें जो जो लागू पड़े उसके प्रति इस प्रकार का स्नेह प्रेम मुमुक्षु को आता है तब उसको कांता दृष्टि की प्राप्ति हुई है। आज्ञा रुचि भी है और खास करके तो उपदेश लिया है खास करके उपदेश धर्म लिया है उपदेश मैंने अपने को जो हित में लागू पड़े ऐसी बात ऐसे अर्थ से भरे हुए ये दो पद है ये जो दो पद है वो इस अर्थ से भरे हुए हैं। वे पद तो भक्ति प्रधान है ऐसे तो दो ये दो पद भक्ति प्रधान है तथापि उस प्रकार से गूढ़ आश्रय में जीव का निधिध्यासन न हो तो वचित अन्य ऐसा पद ज्ञान प्रधान जैसा भाषित होता है और आपको भाषित होगा ऐसा जानकर उस दूसरे पद का वैसा भाष बाधित करने के लिए पत्र पूर्ण करते हुए फिर मात्र प्रथम का एक ही पद लिखकर प्रधान रूप से भक्ति को बताया है। क्या कहा ज्ञान प्रधान और भक्ति प्रधान। क्यों? श्रुत धर्म में श्रुत तो ज्ञान का नाम है, तो ज्ञान की प्रधानता हो जाएगी। तो कि नहीं, हमारा यहाँ ध्यान खींचना है भक्ति प्रधानता में, ज्ञान प्रधानता में ध्यान नहीं खींचना है, ऐसी बात कह रहे हैं। देखो फिर से, ऐसे अर्थ से भरे हुए ये दो पद है, वे पद तो भक्ति प्रधान है। क्या पद तो भक्ति प्रधान है, तथापि उस प्रकार से गूढ़ आश्रय में जीव का निधिध्यासन न हो, जीव का समझ नहीं लिया, जीव का निधिध्यासन, क्योंकि फीलिंग स्टेज की बात है, ये निधिध्यासन होना चाहिए तो फीलिंग में आएगा, विचार से नहीं आएगा। तो क्वचित अन्य ऐसा पद ज्ञान प्रधान जैसा भाषित होता है, अन्य मैंने दूसरा पद, और आपको भाषित होगा। किसके पर पत्र लिखा है? सौभाग भाई पर लिखा है। ऐसा जानकर उस दूसरे पद, जानकर उस दूसरे पद का वैसा भाष बाधित करने के लिए, ज्ञान प्रधानता बाधित करने के लिए पत्र पूर्ण करते हुए फिर मात्र प्रथम पद का एक ही पद लिखकर प्रधान रूप से भक्ति को बताया है। तो आगे भी जो एक ही पद लिखा, दूसरा पद नहीं लिखा, मन महिला नूरे वाला ऊपरे बीजा काम करंत, इतना ही लिखा। ये तो भी लें, पत्र ने अंत एम लिखे, पत्र पूर्ण कर त्राणुमा, 493 है। એક જ કડી લખી છે। માર્ગ છે એ ભક્તિ પ્રધાન છે, એટલે અનુભવ પ્રધાન છે, કેમ કે જ્ઞાનમાં વિચારની પ્રધાનતા છે અને ભક્તિમાં લાગણીની પ્રધાનતા છે, એટલે લાગણીનો વિષય લીધો, ફિલિંગ, લાગણી મીન્સ ફિલિંગ, એમાં અનુભવની પ્રધાનતા, લાગણી અનુભવ ગોચર જાય થાય છે, જ્યારે વિચાર છે એ તર્કણા પ્રધાન છે। ભક્તિ પ્રધાન દશા મેં રહેને સે ક્યા ફાયદા હૈ ઇસકા, મુમુક્ષુ કો ભક્તિ પ્રધાન દશા મેં રહેને સે જીવ કે સ્વચ્છંદ આદિ દોષ સુગમતા સે વિલય હોતે હૈ, વરના સ્વચ્છંદ જાયેગા નહીં। સબસે તકલીફ દેને વાલા કોઈ બડા દોષ હૈ, મહાદોષ હૈ, તો વો સ્વચ્છંદ હૈ, ક્યોંકિ જ્ઞાન પ્રધાનતા મેં મુજે એસા લગતા હૈ, યે બતાયેગી, મેરે વિચાર મેં યે બાત આતી હૈ, મુજે તો એસા લગતા હૈ, વૈસા ભાષિત હોતા હૈ, યે બુદ્ધિ હૈ, वो टेढ़ी होती है तो टेढ़ापन कर लेती है। भक्ति प्रधानता से वर्तने से स्वच्छंद होएगा नहीं, मान चढ़ेगा नहीं, क्योंकि खुद को विनम्र होना पड़ता है, भक्ति करने वाले को तो विनम्र होना होता है, तो उसको मान कहाँ से चढ़ेगा, और ज्ञान वाला तो सूक्ष्म के मान में आ जाएगा। प्रधानता दिखाने में ज्ञानी पुरुषों का ये मुख्य आशय है, वो मुमुक्षु को बचाने के लिए ये बात करते हैं। यदि जीव में अल्प भी निष्काम भक्ति उत्पन्न हुई होती है तो कैसी भक्ति लिया, निष्काम भक्ति, क्योंकि सकाम भक्ति है तो दृष्टि को मलिन करती है। यानी दृष्टिकोण जब मलिन रहता है तो भक्ति भी सकाम रहती है, लेकिन यदि जीव में अल्प भी निष्काम भक्ति उत्पन्न हुई, बहुत निष्काम भक्ति हो गई उसको तो बहुत फायदा हो गया, लेकिन थोड़ी भी निष्काम भक्ति प्राप्त हुई तो वह अनेक दोषों से निवृत्त करने के लिए योग्य होती है, वो अनेक दोषों को नहीं मिलेगी, उसको मान तो चढ़ेगा ही नहीं, स्वच्छन तो इससे होगा ही नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा दोष से बचता है। तो फिर छोटे छोटे दोष से भी हो बचने के काम में निष्कामता है, निष्कामता में कोई भी आशा अपेक्षा नहीं रहना। भक्ति करने वाले को आशा अपेक्षा रहते कि मैं भक्ति करता हूं तो मुझे ये होना, कुछ नहीं, निष्काम भक्ति मैंने निष्काम भक्ति, जैसे नरसिंह मेहता को थी, मीराबाई को थी, इसका दृष्टांत दिया है, निष्काम भक्ति मैंने, कुछ नहीं चाहिए, संसार के कोई पदार्थ की वांछा नहीं और कोई मान स्थान की भी वांछा नहीं, हम भक्तिवान है वो बात भी वहां नहीं है, हम बड़े भक्तिमान है वो बात भी वहां नहीं है, वरना गड़बड़ पर्याय दृष्टि में वो हो जाता है कि भक्ति करता है तो भक्तिवान बना का अहम होता है,
सबसे ज्यादा यही होता है, सबसे ज्यादा यही होता है भक्ति का।
हाँ, वहां निष्कामता नहीं है, वहां निष्कामता नहीं,
कृपा नहीं करना,
कृपा में क्या चाहते हो, कृपा माने क्या,
प्रसन्नता,
तो वो तो निष्कामता होगी ना, प्रसन्नता होगी ही, कृपा में क्या चाहते हो, कोई कृपा के बारे कोई गड़बड़ तो नहीं ना, तो कृपा में तो क्या है, उसकी प्रसन्नता वही इसकी कृपा है,
तो यही रहता कि हमसे प्रसन्न रहे हैं, हमसे प्रसन्न रहे हैं,
साधना का अमलीकरण होगा तो प्रसन्न हो जाएंगे,
निष्काम भक्ति होगी तो तुमसे प्रसन्न ही रहेगा, तुम अपना ड्यूटी करो ना निष्कामता के, वो प्रसन्न सहज है, प्रसन्न है यानी मेरी प्रशंसा करे,
प्रशंसा करे वो नहीं कि हमारा ऐसा परिणाम होना चाहिए कि उनका चित्त प्रसन्न रहे हमको देख करके, ऐसा मतलब उनको
तो बात कर रही परिणाम की, वो तो सहज हो गया, वो तो रिजेक्टेड पोजीशन है,
निषेध आता है प्रशंसा करे तो उल्टा उसका निषेध आता है, कुछ भी नहीं है फिर भी इतना कम
हो, कृपा तो अवश्य मड़े भाव
से काम का, कृपा मिले इसका मतलब कि अभी मिली तो नहीं, नहीं मिली इसका मतलब निष्कामता भी
नहीं
आई, नहीं निष्कामता आ गई तो वो तो सहज है, यदि जीव में अल्प भी निष्काम भक्ति उत्पन्न हुई तो वह अनेक दोषों से निवृत्त करने के लिए योग्य होती है। अल्प ज्ञान अथवा ज्ञान प्रधान दशा असुगम मार्ग, कैसा असुगम मार्ग के प्रति या स्वच्छंदादि दोष के प्रति अथवा पदार्थ संबंधी भ्रांति कल्पना के प्रति ले जाता है, ज्ञान प्रधानता में एक गड़बड़ होती है, या तो कल्पना कर बैठेगा या तो स्वच्छंद करेगा या तो कहीं असुगम मैंने घुसवाड़ा में आ जाएगा, फंसेगा, ऐसा होगा कि वैसा होगा, वैसा होगा कि ऐसा होगा, ये ज्ञान प्रधानता में आता है, ये चिंता ज्ञान प्रधानता वाले को होती है, भक्ति प्रधानता वाले को नहीं होती, उनको तो एक ही बात है भजे मनु प्यारे, बाकी कोई बात नहीं है, और इसका मन भजन करता ही रहता है। हे मन तू अपने प्यारे को भज भज मन प्यारे बताता है अन्यमति में, तो उसका मन भजन करता ही रहता है, बात खत्म, कोई चिंता नहीं। लेकिन ज्ञान प्रधानता में ऐसा होगा कि वैसा होगा, वैसा होगा कि ऐसा होगा, यह तो थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मैं कुछ समझता हूँ, मैं जानता हूँ।
ज्ञान प्रधान और भक्ति प्रधान दोनों का समन्वय हो तो
वो तो भक्ति प्रधानता होगी तो ज्ञान का समन्वय आ ही जाएगा, और यथार्थ ज्ञान होगा तो भक्ति प्रधानता आ जाएगी, वो तो साथ में ही होता है, एक सिक्का के दो बाजू है।
निष्कामता में तो बाकी भक्तों की ही भक्ति होती है, निष्कामता में तो भक्तों की ही भक्ति होती
है। बहुत करके ऐसा होता है ज्ञान प्रधानता में, उसमें भी इस काल में तो बहुत काल तक यानी जीवन पर्यंत भी जीव को भक्ति प्रधान दशा की आराधना करना योग्य, कितना वजन है कृपालु देव की, वो आज्ञा समझो या उपदेश समझो या इस काल के जीवों को बचाने के लिए सूचना समझो, कुछ भी समझो।
भक्ति प्रधान का आपने दृष्टांत दिया, मगर ज्ञान प्रधान ने उसका भी दृष्टांत दिया।
ज्ञान प्रधानता में तो शास्त्र वास्त्र पढ़ता है और न्यायक हो न्यायक हो में चढ़ता है,
जैसे
तो बहुत है, हमारे यहाँ तो कोई दृष्टांत देखने जाना पड़ता नहीं है। ऐसा निश्चय ज्ञानियों ने किया ज्ञात होता है, और ऐसा हमें भी लगता है और ऐसा ही है। किसने बात स्पष्ट किया है, पीछे के जो पैराग्राफ में बात है वो तो एक प्रति मूर्ति संबंधी की बात किया है, कि सुभाष भाई को कुछ ऐसा विचार आया है कि आपकी एक मूर्ति हम बना लें और घर में रख लें तो आपका नित्य प्रति हमें दर्शन हो जाए, या छवि बना लें। इसमें आज्ञा लेने की कोशिश किया है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो ऐसा हम कर ले, तो कृपालु देव ने ना दे दिया। आजकल तो फोटो का आग्रह रखते हैं ना लोग, हमारे घर में फोटो रखना है, फोटो रखना है, कृपालु देव ने ना दिया है। सुभाष भाई जैसे भक्त को ना दिया है, क्यों ना दिया है मालूम है, उसका कारण दिया है कि परोक्ष का दर्शन करके तुमको प्रत्यक्ष की लालायतपना है वो कम हो जाएगा। चलो रूप दर्शन तो आप मेरे को घर में ही हो जाता है, तो प्रत्यक्ष की जो आतुरता है वो कम हो जाएगी, ना दे दिया है इस प्रकार से। परिणमन जो आराधन मैंने परिणमन
उससे तो पढ़ना चाहिए,
विचार नहीं परिणमन,
फोटो देख करके तो और पढ़ना चाहिए उनके प्रति का और जाने का भाव, उल्टा कैसे हो जाता है।
प्रत्यक्ष परोक्ष की बात समझ में आनी चाहिए तब पता चलेगा।